अक्कर माशी। उस दिन स्कूल के अधिकांश बच्चे वन भोजन की तैयारी से स्कूल आए थे, पर दलित बस्ती के हम कुछ बच्चे कंधे पर स्कूली थैला लटकाए स्कूल गए थे। वहां जाने पर गुरुजी ने कहा, जाओ रोटियां बांध कर ले आओ, वन भोजन जाना है। छुट्टी की खुशी में हम बैलों की तरह दौड़ते भागते हुए घर की ओर लपके। चटनी रोटी बांधकर हम भी उन बच्चों में शामिल हुए जो शिक्षक के निर्देशानुसार कतार में खड़े हो रहे थे। उसी समय जना माए हाथ में छड़ी लेकर वहां आई। संगू को कतार से बाहर निकालते हुए पीटने लगी। संगू रोने लगा। वह हमारे साथ वन भोजन के लिए जाना चाह रहा था, पर जना माए उसे कतार से बाहर खींचने लगी। जना माए किसी की सुन नहीं रही थी। उसे पीटते हुए वह कह रही थी, संज्ञा चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो लातों की प्रसाद दूंगी। तेरा बाप भूखा ही मजदूरी को गया है, उसे रोटी पहुंचानी है। तू अगर नहीं जाएगा तो वह दिन भर भूखा ही रहेगा, और जानता है आगे क्या होगा? रात में वापसी पर वह सारा गुस्सा तुझ पर निकालेगा, तेरी बोटियां काटेगा, इसलिए कह रही हूं चुपचाप चल। पहली कक्षा से लेकर सातवीं कक्षा तक के शिक्षक, लड़के लड़कियां, इन सबको एक साथ चलते देखकर अजीब लग रहा था। उपलियां चुनने आई औरतें बड़े अचंभे से हम सबको देख रही थी। मैं बड़े उत्साह से चल रहा था। मौल्या नाम का मेरा एक दोस्त पशुओं की देखभाल कर रहा था। उस समय हम सबको चलते देख उसकी छटपटाहट को मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। मौल्या मेरी ही तरह रोज स्कूल आता था, परंतु उसके पिता ने उसे स्कूल से निकाल दिया तथा पशुओं की देखभाल पर लगा दिया था, अर्थात नौकरी पर लगा दिया। इतनी छोटी उम्र में ही मौल्या नौकरी कर रहा था। रोज 2 बार भोजन तथा प्रतिवर्ष 100 रुपये उसका वेतन था। उस वर्ष मौल्या की माँ के पास पहनने के लिए धोती भी नहीं थी। घर में हमेशा भूखा सोना पड़ता था। उसकी इस नौकरी से उसके पीठ का बोझ घर वालों पर से हट गया था। एक के पेट की चिंता मिट गई थी, और फिर सालाना 100 रुपये मिलने वाले थे। उन पैसों से परिवार वालों के लिए कपड़े खरीदे जाने वाले थे। इस तरह मौल्या परिवार का आधार बन गया था। हम सब लड़के कतार से चल रहे थे और मौल्या भैंस पर बैठा गाना गा रहा था। एक स्थान पर हमें रुकने के लिए कहा गया। बड़े लड़के पेड़ों पर चढ़ने लगे। दौड़ धूप शुरू हुई। लड़कियां किकली खेलने लगी। शिक्षक ताश खेलने में जुट गए। मज़ा ही मज़ा था। मैं छोटा था, दूर बैठा सब कुछ देख रहा था। बनियों तथा ब्राह्मणों के लड़के कबड्डी खेल रहे थे। हम अछूत बच्चे उनसे अलग थलग ही बैठे थे। मलल्या, मारत्या, कुंबया, परश्या, चंदया आदि छूना पानी का खेल शुरू कर चुके थे। दलितों का खेल अलग, सवर्णों का खेल अलग। दो दो खेल, दो दो आंधियों की तरह। थोड़ी देर बाद खाना शुरू हुआ। बनिए, ब्राह्मण, मारवाड़ी मुसलमान, सुनार, ठाकुर, जाट आदि जमात के 100 लड़के, शिक्षक और लड़कियां बरगद के विशाल पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठ गए गोलाकार में, और हम अछूत बच्चे एक अलग पेड़ के नीचे। श्लोक के साथ उन्होंने खाना खाना शुरू किया। हम उस श्लोक का अर्थ भी नहीं जान पाए। मारुति के पास रोटी बांधने के लिए कपड़ा नहीं था, इस कारण मेरे ही कपड़े में उसकी रोटी बंधी हुई थी। उम्बिया सूखी मछली ले आया था। मलल्या की रोटी पर केवल चटनी थी। हम सब ने रोटियां निकाली। लड़के लड़कियां शिक्षकों को सब्जी रोटी दे रहे थे। उनके पास तली हुई अच्छी चीजें थीं। हमारा पेड़ भी छितराया हुआ था हमारी तरह। हवा का झोंका आता कि धूप लगती, गर्म हवा का एहसास होता। छितराई छांव में हम बैठे थे। उम्बिया ने मुझे सूखी मछली की सब्जी दी। मैंने अपनी सब्जी उसे दी। इच्छा हुई कि अपनी सब्जी रोटी शिक्षकों को दे आऊं, पर क्या मेरी रोटी शिक्षक खाएंगे? गांव के अन्य बच्चों की रोटियां ताजी थी, माफ कीजिएगा, अन्य बच्चों की रोटियां ताज़ा थीं, मसालेदार सब्जियां थीं और फिर तली हुई अन्य चीज़ें भी थीं। उनकी माताओं ने बड़े प्यार से उन्हें चीज़ें बनाकर दी थी। दलितों के पास अलबत्ता बासी रोटियों के टुकड़े थे, वे भी इतने कि हमारे लिए ही पर्याप्त ना हो। पेट तो शमशान भूमि की तरह है, जितने भी कितने भी मुर्दे जलाते रहो, उसे और मुर्दे चाहिए। माँ चिढ़कर कहती थीं, तेरा पेट है कि कुआं, टोकरी क्यों नहीं बांध लेता मुंह पर। अधपेट ही उठ जाता था मैं यह सब सुनते सुनते। खाने वाला मैं अकेला थोड़े ही था, अकेला मैं ही पेट भर खा लेता तो बाकी क्या खाएंगे। पर आज तो घर पर जो भी था मैं बांध कर ले आया था। गांव की लड़कियों ने हमें भी सब्जी रोटी दी, पर ऊपर से, यह सोच कर कि हमारी रोटियों तथा मिर्च का उन्होंने देखा होगा। मुझे अपनी स्थिति पर शर्म भी आई, मैं चुपचाप खाने लगा। गांव के बच्चे तथा शिक्षक खा रहे थे, उनके निकट ही लड़कियां बैठी हुई थी, उनमें गपशप चल रही थी। हम अछूत एकदम खामोश थे। सामने मरी मछली के टुकड़े थे। बहुत सहज और मुक्त होकर रहने वाले उन लड़कियों के होंठ में मैं मन ही मन चबा रहा था। खाना खत्म हुआ, सवर्णों की रोटियां और सब्जियां बच गई थीं। शिक्षकों ने बची हुई सारी जूठन सामग्री इकट्ठी करके हमें देने के लिए कहा। मैं, मारुति, उम्बया व प्रश्या बचे खुचे अन्न की उस जूठन को लेकर अपने स्थान पर आने लगे। लड़के लड़कियां मजा लेते हुए आगे निकल गए, पर हम सबके प्राण तो उस जूठन में ही अटक गए थे। मारुति उस जूठन को लेकर आगे बढ़ने लगा और हम चीलियों की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे। हम सब निगम्पा के खेत में रुक गए। जूठन बंधा कागज खोलकर हमने उत्सुकता से देखा। उसमें गेहूं की नमकीन रोटियों, पराठों, लड्डुओं, गुजियों, चपातियों आदि के छोटे बड़े टुकड़े थे। बेहतरीन गंध आ रही थी। हम सब अब गोलाकार में बैठ गए और उस जूठन पर टूट पड़े। कई दिनों बाद ऐसी चीजें मिली थीं। सभी भूखे थे। भिखारी की झोली की तरह हमारे पेट की स्थिति हो गई थी। घर आने के बाद मैंने माँ से यह सब कहा। माँ भूख पीड़ितों की तरह कहने लगी, घर के लोगों के लिए उसमें से थोड़ा ले आता तो क्या बिगड़ता, बचा हुआ अन्न अमृत होता है। यह सुनकर मैं दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो शिक्षक कहने लगे, वन भोजन पर निबंध लिखो। सातवीं कक्षा के छात्र लिख रहे थे, मैं तीसरी में था। हमें भी निबंध लिखने के लिए कहा गया। सातवीं तथा तीसरी कक्षा के शिक्षक तंबाकू खाते बैठ गए। दोनों कक्षाएं एक ही कमरे में चल रही थीं। अधिकांश लड़के तेजी से लिखने लगे। मैं चिंतित था, शिक्षक मुझ पर चिढ़े हुए थे। मैंने स्लेट पेन से निकाली, स्लेट पर थूक लगा दिया, फिर पोंछता रहा। पोंछ पोंछ कर कमीज का एक हिस्सा काला हो चुका था। क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा था। वन भोजन का वह दृश्य आंखों के सामने आया। वे कतारें, अलग अलग बैठने की योजना, हमारा स्पर्श न हो इस भय से परोसने वाली वे लड़कियां, वह छितराया हुआ पेड़, कागज में बांध कर दी गई वह जूठन, माँ तथा शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न, कहाँ से शुरू करूं यह निबंध। स्कूल कभी विठोबा अथवा कभी महादेव के मंदिर में लगा करता था। स्कूल के भीतर, मतलब मंदिर में, ब्राह्मणों तथा वैश्यों के लड़के बैठते थे। पहली कतार में एक और लड़के, दूसरी ओर लड़कियां, उनके पीछे चमारों के लड़के और सबसे पीछे महार लोगों के। दरवाजे के निकट मातंग जाति का अर्जू हमारे साथ नहीं बैठता था। हम महार जमात के थे, इसलिए प्रति शनिवार पूरे स्कूल की ज़मीन को गोबर से लीपने का काम हमें दिया जाता था। गोबर इकट्ठा करके पूरा स्कूल लीपने के बाद शिक्षक मेरी सहायता करते। शिक्षक मेरी सराहना करते। घर पर मैं किसी भी प्रकार का काम नहीं करता था, पर स्कूल का यह काम मुझे चुपचाप करना पड़ता था। एक दिन यह काम करते करते मैं मंदिर के गर्भगृह में चला गया। गर्भगृह में पहुंचने पर मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे कोई देख लेगा, इस डर से मैं परेशान भी हो गया। श्रावण के महीने में स्कूल दूसरे स्थान पर लगता था, कभी गंगबाई के प्रशस्त मकान में, तो कभी गांव के मारवाड़ी के मकान में, कभी हनुमान मंदिर के देहली पर, तो कभी लगी नशा के मंदिर पर, तो कभी भूताल सिद्ध के विशाल मकान में। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मेरी बिरादरी के परश्या नामक लड़के ने भूताल सिद्धि की मूर्ति पर पेशाब कर दिया था। परश्या बहुत चालू लड़का था। मैं सोचता कि परश्या पर जरूर भगवान का कोप हो जाएगा, उसका पुरुषत्व खत्म हो जाएगा। बेवकूफ़ ने बेकार में ही मूर्ति पर पेशाब किया। मैं घबरा गया, तौबा तौबा करता रहा। धर्म से मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मनुष्य। गांव के अन्य लड़के भगवान की मूर्ति के निकट जा सकते हैं, पर हम नहीं जा सकते। कक्षा में पढ़ाया जाता था कि बच्चे ईश्वर द्वारा निर्मित फूल हैं, तो क्या हम भगवान द्वारा निर्मित फूल नहीं हैं? वास्तव में हम लोग गांव के बाहर फेंके हुए कूड़े कचरे की तरह थे। एक ही स्कूल में अनेक जाति की इकाइयां थीं। हमारी बस्ती का संबंध गांव से नहीं था, मानो गांव का विभाजन कर हमें गांव से तोड़ा गया हो। बचपन से यहाँ जीते हुए और रोते हुए भी मैं पराये की तरह ही रहा। उम्र के साथ यह परायापन बढ़ता ही रहा। मेरा बचपन मुझे आज भी भयावह लगता है। सावन माह के कारण स्कूल तेली की कोठी में लगता था। मैं पहली बार उस कोठी में गया था, लड़कों में जाकर बैठ गया। उस कोठी के मालिक के लड़के महाद्या ने मुझे कहीं से देख लिया। वह भागता हुआ आया, मेरी स्लेट तथा पुस्तकें छीन ली और पूरी शक्ति से वह मुझे पीटने लगा। आंखों के सामने तारे चमकने लगे। सारे बच्चे मेरी ओर देख रहे थे। शिक्षक आए, उन्होंने उन सब से दूर दरवाजे के पास बैठने के लिए मुझसे कहा। मैं उस स्थान पर अकेला बैठ गया, भीतर ही भीतर घुटते हुए, ध्रुव की तरह स्थिर। जब स्कूल मारवाड़ी की कोठी में लगता तो मैं बैठक के नीचे बैठता, लड़के लड़कियां ऊपर बैठते। शिक्षक और ऊंची जगह पर बैठकर सवर्णों के लड़कों को गणित समझाते। हम नीचे जूतों की तरफ बैठे रहते, सभी ओर चप्पल और जूते। रत्ना नामक लड़की की चप्पल बड़ी खूबसूरत लगती। शिक्षक की चप्पलों को मैं छूता नहीं था, सोचता चप्पलों को छूत लग जाएगी। गुरुजी की चप्पल मुझे राम की पादुकाओं की तरह लगती थी। मुख्य गांव क्या होता है बचपन में मुझे मालूम ही नहीं था। महारों की बस्ती में ही खेलता था, वहीं बड़ा हो रहा था। कचरे का ढेर, कुत्ते, सुअर तथा झोपड़ी, यही संगी साथी थे। जगन्नाथ पटेल के घूरे पर दिन भर खेला करता। पहली बार जब मैंने स्कूल देखा था वह दिन आज भी मुझे याद है। छोटे छोटे बच्चों से भरा हुआ कमरा, मैंने पहली बार कुर्सी देखी, ब्लैक बोर्ड देखा, गुरुजी को देखा, छड़ी देखी। मुझे गुरुजी की छड़ी के प्रति अद्भुत उत्सुकता थी। सही अर्थों में मेरी पढ़ाई तीसरी से शुरू हुई। 2 साल तक तो शिक्षकों ने मुझे कागज पर ही उत्तीर्ण किया था, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। शिक्षक बुलाने आते तो मैं भाग जाता, छिपकर बैठता। आज लगता है कि हम लोग, मैं, परश्या तथा उम्बक्या काफ़ी चालू थे। शिक्षक को देखते ही हमें शरारत सूझती। शिक्षक तू कितना, बच्चे भागे पकड़ लवड़ा, चिल्लाते हुए हम तीनों दौड़ने लगते। हम उम्र लड़कों के साथ मैं पहले दिन स्कूल गया था। मलल्या, मारत्या तथा नीलिया जहाँ बैठते वहीं पर भी जा बैठता। उस दिन मुझे जोर से पेशाब लगा था, पर शिक्षक से पूछूं कैसे? शिक्षक मुझसे काफ़ी दूर थे, उन्हें पास बुलाने की हिम्मत भी नहीं थी। पेशाब के लिए जाना हो तो अपनी छोटी उंगली अलग से दिखलानी पड़ती है, यह मुझे उन दिनों मालूम नहीं था। मेरी गोदावरी वहीं पर प्रकट हो गई। पेशाब निक्कर से बाहर निकलने लगा। बच्चे चिल्ला उठे, मैं घबरा गया। शिक्षक ने मुझे कक्षा से निकाल बाहर किया। गीले निक्कर से मैं घर आया। बाद में 2 दिन तक मैं स्कूल नहीं गया। निक्कर का मतलब आज के अंडरवियर, बहुत हल्के दर्जे के सूती कपड़ों से बने। 7वीं कक्षा तक ऐसे ही कपड़े के निक्कर पहनता था, वे भी फटे हुए। माँ ने पीछे से पैबंद लगा दिए थे, वह भी फटकर जब उपस्थ दिखाई देता तो मैं कमर पर तौलिया लपेट लेता। पेशाब की छुट्टी हुई कि बच्चे छेड़ते, कंकड़ मारते, महार महार कहकर चिल्लाते। मैं बेहद परेशान हो जाता। एक दिन गांव के बच्चों ने मुझे बिना मतलब के घेर लिया। मेरा साथी इल्या भाग खड़ा हुआ। बच्चे आवारा बैल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं बेहद परेशान हो गया। लगा कि आकाश ही शरीर पर गिर रहा है। राम कलकोटे नामक एक सवर्ण लड़के ने मुझे जोर से थप्पड़ लगा दिया। मैं रोने लगा। वे सब भाग गए। बाद के दिनों में जब कभी राम को देखता तो थरथराने लगता। 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को प्रभात फेरी निकलती। सभी बच्चे स्कूली वर्दी में आते। मैं अलबत्ता निक्कर में शर्ट खोस लेता। प्रभात फेरी केवल गांव में ही घूमती थी। मुझे लगता वे सब मेरी बस्ती में भी आएं, मेरी बस्ती के लड़के मुझे इस प्रभात फेरी में देख लें, ऐसी इच्छा होती। शिक्षक हमें कतारों में ले जाते। कतार में चलते तथा नारे लगाते हुए देखकर मेरी नानी उल्लसित हो उठती। उनका हृदय भर आता, अपना जीवन सार्थक लगता। मेरी नानी का नाम था संता माय, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। मेरी नानी सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती। 15 अगस्त या 26 जनवरी को झाड़ू लगाते हुए वह मुझे दिखती। उन्हें देखकर मुझे होश आता और मैं जोर से नारे लगाता। मुझे देखकर वह हंसती, बहुत उत्साह से झाड़ू लगाती। घर लौटने पर वह मुझे वात्सल्य से चूमती। उनके मुंह से दुर्गंध आती, मिस्सी लगाने के कारण उनके दांत काले दिखते। स्कूल छूटने पर हम लोग नदी के किनारे खाना खाने जाते, रात में बैठकर खाते, नदी में तैरते, नदी के ऊपरी घाट पर सवर्ण पानी भरते, उनकी औरतें कपड़े धोती। नदी के निचले घाट पर धननगर व माफ कीजिएगा नदी के निचले घाट पर धनगर व कुनबी पानी भरते, नहाते, कपड़े धोते, अपने जानवरों को नहलाते। उसके और निचले घाट से हम लोगों को पानी लेना पड़ता, नहाना तथा कपड़े धोने पड़ते। ऊपर के दोनों हिस्सों का गंदा पानी हमारे हिस्से में आता, हम उनके घाट पर जा नहीं सकते थे। एक दिन मैं नदी के बीच पानी में खड़े होकर पानी पी रहा था। किसी माँ ने अपने छोटे बच्चे का मैल से भरा कपड़ा शायद धोया था। उसी मैले का सैलाब मेरे नज़दीक आ रहा था। उबकियाँ आईं, पर कहूँ किससे? और फिर जल से अधिक पवित्र कौन सी वस्तु है? सवर्णों के घाट से आए गंदे पानी को हम लोग पचा रहे थे। गांव के समृद्ध लोगों के घरों में जब शादियां होती, हम बेहद खुश हो जाते। समृद्ध लोग सारे गांव को भोजन का न्योता देते, किंतु सभी के निबटने के बाद आखिर में हमारी बस्ती को बुलावा आता। इस प्रकार की शादियों में मैं और मेरे मित्र दिन भर उस घर के आसपास ही मंडराते, मड़वा देखते, बाजा सुनते, लाउड स्पीकर पर बजते गाने सुनते, सजी धजी लड़कियां देखते, बेहतरीन भोजन की सुगंध सूंघने को मिलती। हम छोटे छोटे बच्चे दिन भर मड़वे तले मंडराते रहते। बाजा बजने लगता कि नाचने कूदने लगते। इस बीच अचानक गांव वालों में से या उस घर वालों में से कोई व्यक्ति आकर हमें वहां से भगा देता। थोड़ी देर के लिए हम भाग जाते, किंतु धीरे धीरे फिर इकट्ठे होने लगते। शादी धूमधाम से होती, रिश्तेदारों को भोजन करवाया जाता और हम लोग बाहर भूख निगलते हुए खड़े रहते। कतार पर कतारें बैठती, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती। घर का कोई प्रौढ़ व्यक्ति गंभीर आवाज में पूछता, सबको परोसा गया है ना? ले जाइए, नहीं, आराम से खाइए। परोसने वाले कतारों के पास से आवाज़ लगाते हुए गुजरते, सब्जी, खीर। कोई पूछता, चपाती चाहिए, घी लीजिए। हम सब इन आवाज़ों को सुनते तथा भूख से बेहाल हो जाते, पेट कान तक आ जाते, पेट कान बन जाते, पेट कतार के आदमी हो जाते। आरंभ में भगवान ने आदमी को एक ही पेट दिया था। आदमी खाने पीने लगा, बड़ा मज़ा आने लगा। क्या खाएं और क्या नहीं, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। खाने को बहुत था पर पेट एक ही था। आदमी परेशान हो गया। उसने सोचा, खाने के लिए तो भगवान ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, पर पेट तो एक ही दिया है। इस कारण वह फिर ईश्वर के पास गया और कहने लगा, भगवान, मुझे एक ही पेट देकर तुमने गलती की। मुझे तो बहुत खाना है, बहुत पीना है। दो पेट दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ईश्वर ने उसे समझाया, बेटे, तू जा और पहले इस एक पेट की भूख को शांत कर, फिर मेरे पास आ, तब तुझे दूसरा पेट दूंगा, जरूर दूंगा। उस दिन से आदमी इस एक पेट की तृप्ति में लगा है। अब उसे इस पेट को भी भरना मुश्किल हो गया है। वह अब अधपेट रहने लगा है। भूख के कारण खुद को बेचने लगा है। भूख के कारण ही औरत वेश्या बनने लगी और पुरुष चोरी करने लगा है। भूख आदमी से सभी प्रकार के काम करवा लेती है। वह मैला निकालने और ढोने लगता है। अब उसे महसूस होने लगा कि ईश्वर ने पेट देकर गलती की है। मुझे भी हमेशा ऐसा ही लगता। शादी के घरों के सम्मुख मैं भूखा पेट लिए खड़ा होता। बस्ती के लिए कब बुलावा आएगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए शादी के घर का निमंत्रण लेकर महार बस्ती में आता। खाने चलो की आवाज़ देता, पूरी बस्ती निकलती। उस दिन सभी का चूल्हा बंद होता था, सबके सब निकलते, कुत्ते भी। पहले औरतों को परोसा जाता, औरतें अपने बच्चों को लेकर निकलती, जत्था का जत्था शादी वाले घर की ओर निकलता। मेरी माँ कभी किसी पंगत में नहीं बैठी, किसी के न्योते पर नहीं गई। मैं अपनी नानी संता माई के साथ खाने जाता, साथ में बहनें भी होती। मेरे पिता नहीं हैं, मैं किसी के साथ हो लेता, शर्ट के नीचे थाली छिपा ले जाता। थाली में खीर परोसी जाती, छोटे बच्चों को कम ही परोसा जाता। मैं झट से शुरू कर देता, बहुत तेजी से थाली खाली कर देता, फिर परोसवा लेता। माँ घर में भूखी रहती, इतना बेहतरीन भोजन घर ले जाने की इच्छा होती। पंगत उठने के बाद बची खीर की थाली लेकर घर की ओर निकलता, खुशी होती। पर एक बार भीमप्पा ने खीर से भरी हुई मेरी थाली खींच ली, मिट्टी में फेंक दी। वह मुझे पीटने लगा, इतना अधिक क्यों परोसवा लेते हो, चोरी करते हो? फिर किसी न्योते में दिखाई दिया तो देख लूँगा, इनकी जात ही गंदी है, साले खाते हैं और घर भी ले जाते हैं। मैं रोते हुए घर आया। भीमाप्पा चौकस होकर औरों की ओर भी देखने लगा था, खीर ले जाने वालों को रोक रहा था, गालियां दे रहा था। उनमें मेरी बहन नागी भी थी। मैं खाली थाली लेकर आया, पर संता माँ बहुत चालबाजी से थोड़ी सी खीर ले आई। चोरी की उस खीर को हम घर पर खा लेते, खीर खट्टी मिट्टी लगती थी। संता माँ ऐसी खीर में पानी और गुड़ डालकर गर्म करती और हमें परोसती। कभी कभी संता माँ को शादी के घर में ही बुहारने लीपने का काम मिल जाता। तब तो बहुत सी खीर मिल जाती। खाकर भी खीर जब बच जाती तब वह उसके बड़े बनाती। मतलब खीर को छोटे छोटे गोलाकार में सूखने को रखती। सूखने के बाद वह उसे कहीं सुरक्षित रख देती। जब भूख लगती तब हम उन्हें इमली के बीज की तरह चूसने बैठते। एक बार ऐसा ही ग्राम भोज था। संता माएँ और मेरी बहनें खाकर आ गईं। चोरी से खीर भी ला चुकी थी। मैं खीर मांग रहा था। माँ कह रही थी थाली लेकर वहाँ खाने जाना, पर मुझे अब इस तरह गांव में थाली लेकर जाने में संकोच हो रहा था। इस स्थिति में स्कूल के सहपाठी मुझे देख लें तो बाद में वो चिढ़ाएंगे। रास्ते में कक्षा की लड़कियों के घर भी हैं। उनके घर पर से गुजरते हुए चोर होने का एहसास होता। मेरी इच्छा ही नहीं होती। माँ जाने के लिए कहती, गालियाँ देती, थाली देकर बाहर निकालती, कहती, घर में खाने के लिए क्या है सिवा मिट्टी के? क्या खुद कमाकर कभी कुछ लाया है? जा खा करा। इज्जत, संकोच, लज्जा की बात तू बहुत कर रहा है। मैं खाने के लिए कहाँ से ला दूँ? मेरी जान लिए बगैर शायद तुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। मैं चुपचाप निकलता, थाली कमीज के नीचे छिपा लेता। जितना परोसती उतना खाता, मांगता नहीं। हम लोगों को खाना दिया जाता था पर पानी कभी नहीं। पानी के लिए घर आना पड़ता था। घर आने के बाद माँ की गालियाँ सुननी पड़ती, खीर क्यों नहीं लाया? जूठन से भरी थाली लिए मैं चुपचाप सुनता रहता। संता माई के साथ मैं गोबर समेटने निकलता। वह आगे आगे, मैं पीछे पीछे, पुलिस के कुत्तों की तरह गोबर की गंध लेते हुए। माँ, मैं अपनी नानी को माँ शब्द से ही संबोधित करता रहा हूँ, कि पीठ पर एक थैला होता था बेताल की तरह। टूटी चप्पल को घसीटते हुए पूरे गांव का चक्कर काटती मैं भी। गोबर दिखाई देने के बाद तो भोजन प्राप्ति का आनंद मिलता। गोबर से उपले बनाकर हम बेचते और पेट की आग बुझा लेते। फसल के दिनों में जानवर ज़्यादा खा लेते। ज्वार के भुट्टे खाने के बाद उनके गोबर में फूले हुए पीले दाने दिखते। दानों से भरे हुए ऐसे गोबर को संता माएँ अलग से रखती। घर लौटते समय रास्ते में नदी के पानी में उस गोबर को संता माएँ धोती। गोबर निकल जाता, दाने अलग हो जाते। माँ उन दानों को सुखाती। सूखने के बाद वे कम हो जाते। मुझे लगता उन्हें सुखाना ही नहीं चाहिए। सुखाने के बाद तो वे कम हो जाते। दाने सूखने के बाद हम घर लौटते। उन दानों को वह चक्की में खुद पीसती गाती हुई। उनकी मीठी आवाज़ तथा चक्की की आवाज़ दोनों एक हो जाती। धीरे धीरे शाम हो जाती। मिट्टी के तेल की ढिबरी तपेदिक की रोगी की तरह जलती। एकाध चूहा अचानक दिखाई देता। सुखाने के लिए डाले गए कपड़े की तरह दहलीज पर कुत्ता बैठा रहता। दादा बीड़ी पीते हुए झोपड़ी के कोने में खांसते हुए बैठते। अल्लाह मौला कहते हुए रस सोख लिए गए गन्ने के तरह उनकी आंखें मुझे देखती। मैं दादा से कहता, कहानी सुनाओ, तो दादा मुझे कहते, पैर दबा। मैं उनका पैर दबाता, दादा कहानी कहते। एक थी चिड़िया और एक था कौआ। गोबर से निकले दाने पीसने के बाद संता माएँ उठती। कड़ी धूप तथा बंजर जमी धरती पर घूम आई संता माएँ का चेहरा तथा बटन सूखा हुआ होता। भूख को मारने की आदी हो गई हैं वह। चिंदिया, सूखे डंडल आदि को वह चूल्हे में डालती। उन्होंने कपड़े का एक टुकड़ा मुझे दिया। मसा माँ, यह मेरी माँ है, कि यहाँ से मैं अंगार ले आया। संता माँ उस अंगार को चूल्हे में रखकर फूंकने लगी। धुआं बढ़ने लगा और कुछ ही मिनटों में आग की ज्वाला धधकने लगी। चूल्हे के पास, माफ़ कीजिएगा, ज़रा फिर से सुन लें। चूल्हे के उस प्रकाश में संता माय पसीने से लथपथ दिखने लगीं। चूल्हा मेरे मस्तक की तरह जल रहा था। धुएं से भरा घर आर्त और विह्वल था। किनारा कश कैदियों की तरह मच्छर भाग रहे थे। मच्छरों की आवाज़ से घर गूंज रहा था। दादा कहानी कह रहे थे। दादा की कहानी का मतलब था खाना बनने तक समय काटना। रोटियां बन गईं। जुगवा से मिले आटे की रोटी वह हमें परोस चुकी थीं। वह खुद गोबर से निकाले हुए दाने की रोटी खा रही थीं। उनकी रोटी मुझे विशेष दिखाई दे रही थी, पर मुझे वह कभी देती नहीं थी। आज झगड़कर मैंने एक टुकड़ा ले लिया, मुंह में रखा, दांतों से चबाता रहा। अरे यह क्या, रोटी में तो गोबर की दुर्गंध थी, इतनी कि मानो मैं गोबर की रोटी ही चबा रहा था। मैं उसे सहजता से भीतर धकेल नहीं सका। बड़ी मुश्किल से उसे भीतर धकेल पाया और बचे टुकड़ों को मैंने लौटा दिया। आश्चर्य की संता माँ उस रोटी को सहजता से खा रही थीं। मुझे आश्चर्य होता कि संता माँ को उबकाई क्यों नहीं आती, गोबर की दुर्गंध उन्हें क्यों नहीं महसूस होती। हाथ का निवाला मुंह में जाता, पेट में उतरता और लुप्त हो जाता। एक बार गांव की सड़क पर किसी स्त्री के हाथ से आटे का डिब्बा औंधा हो गया। वह स्त्री ऊपर ऊपर से आटा समेट ले आई थी। मैं और दादा वहीं खड़े थे। उस स्त्री के निकल जाने के बाद मैं उस स्थान पर गया, मिट्टी के ऊपर का आटा समेटने लगा। आटे के साथ काफ़ी मिट्टी भी आ गई। घर पहुंचा, छलनी से आटा छानता रहा। संता माय मेरी इस करतूत पर खुश हुई। उन्होंने मुझे गोद में लिया, चूमा। उनके मुंह से तंबाकू की दुर्गंध आ रही थी। गोबर की दुर्गंध से मिली हुई रोटी की मुझे याद आई। मैं उनसे अलग हुआ। मुझे अभी भी याद है वह कहानी। वह कहानी न दादा ने सुनाई थी न संता माय ने। वह मेरी अपनी कहानी है। मैं गांव में अकेला घूम रहा था। किसी की प्रेत यात्रा निकली थी। क्षण भर मैंने सोचा भाग निकलूं। भूत का डर जो था भयभीत हुआ। रात में वह प्रेत स्वप्न में आएगा, छाती पर बैठ जाएगा, पर भाग नहीं सका। राम बाप नामक व्यक्ति सिंह एक वाद्य बजा रहा था। प्रेत के आगे पटाखे लगाए जा रहे थे, पीछे औरतें रोती हुई जा रही थीं। प्रेत पर पैसे उछाले जा रहे थे। नीलगिरी की गंध आने लगी। प्रेत पर उछाले गए पैसों में से 5 पैसे मेरे पैरों के पास आकर गिर गए। उन पैसों का मुझे डर लगा, फिर भी मैंने उन्हें उठा लिया और शायद उसी के लालच से मैं प्रेत यात्रा में सम्मिलित हुआ। शमशान भूमि के नज़दीक विश्राम के लिए प्रेत को नीचे रखा गया। लोग भी थोड़ी देर के लिए बिखर गए। राम बाप ने बीड़ी सुलगाई। जेठिग्या ने धीरे से मुझसे पूछा कितने पैसे इकट्ठे हुए। मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज़ में कहा 10 पैसे। प्रेत यात्रा फिर शुरू हुई। राम बाप ने सिंग फूका, जेठिंग्या ने हालगी डफली शुरू कर दी। विश्राम के लिए प्रेत को जहाँ रखा गया था वहाँ आंचल भर ज्वार के दानों का ढेर पड़ा हुआ था। शमशान भूमि के भीतर ले जाने के पूर्व प्रेत को शमशान भूमि से थोड़ी दूर पर कंधा देने वाले विश्राम के लिए नीचे रखते हैं, खुद भी विश्राम करते हैं। प्रेत को विश्राम के लिए जहाँ रखा जाता है वहाँ आंचल भर ज्वार और कुछ पैसे रखकर लोग प्रेत के पैर छूते हैं, अंतिम दर्शन करते हैं। मुझे विश्राम के लिए की वह ज्वार निमंत्रण दे रही थी। अंततः मैं वहीं रुक गया। मैं कमीज में ज्वार के उस ढेर को समेटने लगा और फिर तेजी से घर की ओर भागा। खुश हुआ कि संता माँ मुझे आज कितनी आत्मीयता से चूमेंगी, प्यार करेंगी। सोच रहा था कि अमीरों की प्रेत यात्राएं रोज ऐसी ही निकलनी चाहिए।
वे पैसे बिखेरते रहें और हमें पैसे मिलते रहें, साथ ही विश्राम का ज्वार भी। संता माय फटी साड़ी में कपड़ा जोड़ रही थी। प्रेत को मैं छू चुका हूँ, इसका उन्हें पता लग चुका था। मुझे देखते ही वह उछल पड़ी, फटी चप्पल मेरी ओर फेंकने लगी। मैं रो पड़ा, अरे वह प्रेत पर की ज्वार है, जा उसे नदी में फेंका। मैं नदी की ओर चल दिया। जेठिग्या राम बाप गीले कपड़ों में आ रहे थे, वे क्रिया कर्म से निपटकर अपने घर लौट रहे थे। अछूतों की बस्ती विश्राम के ज्वार की तरह है, यहाँ का एक एक व्यक्ति दाने की तरह। प्रेत पर की ज्वारी खाते क्यों नहीं है, वह भी ज्वार ही है ना, पर यह ज्वार अछूत क्यों? इसे खाने से किसी का पेट भरेगा, बोएंगे तो फसल उगेगी। नए वर्ष पर महारों के काम का बंटवारा होता, स्थानीय भाषा में उसे पाडेवार कहते हैं। पाडेवार का अर्थ होता है अछूतों के काम। उस दिन महारों की बस्ती में पुरुष बस्ती की चौपाल पर इकट्ठे होते। सभी के विचार विमर्श के बाद यह सम्मान चार परिवारों की ओर जाता। सभी परिवारों में यह काम क्रमशः बांट दिया जाता। ऊपर की गली का एक, बीच की गली का एक, मुर्गी वाली गली का एक, निचली गली का एक, इस प्रकार ये घर चुने जाते। एक और गली थी जूं गली। उस गली के किसी भी घर को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। वे वतनदार नहीं थे, उनके बदन से हमेशा जू मिलते थे। उनके बदन में हमेशा जू मिलते थे, इसलिए उन्हें जू की गली वाले कहा जाता था। जिनके घर में पुरुष होते ही नहीं थे, उन्हें भी अवसर दिया जाता। जो भी बूढ़ी या जवान औरत उस घर में होती, उसे वह काम करना पड़ता। इन परिवारों को काम के एवज में अनाज दिया जाता। किसी को 20 किलो, किसी को 24 किलो, किसी को 8। इसके अलावा फसल की और भी चीज़ें मिलती। जिनके घर में पुरुष नहीं होते और औरतें काम करना नहीं चाहती थी, वे अपना काम किसी और परिवार के पुरुष को दे देती। इसके लिए आधे हिस्से पर कोई भी तैयार हो जाता। चार परिवारों को कई काम करने पड़ते। महारों की बस्ती की बैठक को लिपना, वहाँ दिया बत्ती करना, सवर्णों के यहाँ कोई जानवर मर गया हो तो उसे खींच कर लाना, काटना, चमड़ा उतारना और उसे बेचना। जिनके घर पर जानवर मरता, वे 2 किलो ज्वार देते। उस ज्वार को भी चारों में समान रूप से बांटना पड़ता था। शाम को बस्ती के सभी लोग बैठक पर सोने आते। बैठक सभी को अपने भीतर समा लेती। रात में बूढ़े अपने जवानी की यादों में खो जाते। बूढ़ों की बीड़ियों के धुएं से वातावरण भर जाता। वे खांसते हुए परेशान हो जाते। अधिकांश बच्चे यहीं सो जाते। दिया बुझा देने के बाद आधी रात में कोई पुरुष किसी बच्चे के बिस्तर में घुस जाता। चिमनी के धुएं से बैठक के ताक काले हो जाते। खटमलों के खून से दीवारें रंगी रहती। लगता किसी ने दीवार पर पान थूक दिया है। ताक में रखे झाड़ू किसी मांत्रिक की तरह लगती। बैठक के सामने ही रात में सभी पेशाब करते। वह जगह काफी गंदी और विचित्र दुर्गंध से भरी रहती। वहीं कहीं बच्चों के खेल की गल होती। बैठक के निकट रखी गई बड़ी कड़ाही पर महारों की बस्ती के अनेक प्रकरण लिखे हुए मिलते। मरी आई का मंदिर पास ही में था। पुराना इमली का पेड़ कौवे तथा अन्य पक्षियों के घोंसलों से भरा हुआ था। बरसों से सबको छांह देते हुए यह पेड़ खड़ा था। इसी पेड़ पर किसी न किसी जानवर का चमड़ा सुखाने के लिए टंगा रहता। गांव में जानवर के मरते ही उसका मालिक बस्ती में आता। जो हकदार होते उन्हें संदेशा देता। संदेशा मिलते ही उस परिवार के पुरुष उसे लाने जाते। जानवर छोटा होता तो कंधे पर ही उसे उठा लाते। बड़ी गाय भैंस हो तो बैलगाड़ी में लाते, दो आगे चलते दो पीछे। हिंदू लोग गाय को माँ के रूप में पूजते हैं, माँ की मृत्यु के बाद उसका क्रियाक्रम करते हैं। परंतु इसी गाय की मृत्यु के बाद महारो को बुलाते हैं। जिसकी गाय मर जाती है उसकी मालकिन रोती रहती है। महार गाय की लाश को उठाते हैं, बैलगाड़ी में डालते हैं। मालकिन इस काम के लिए उन्हें ज्वार देती हैं। जिस महीने में जानवर अधिक मरते थे महारों के लिए वह खुशी का महीना होता था। जिस माह में जानवर मरते ही नहीं वह महीना अकाल की तरह लगता। ऐसे समय कोई अछूत परेशान होकर किसी जानवर को कुछ गलत सलत चीजें खिलाकर मार देता, अथवा माण कुआणना या प्रहलाद किसी दूर गांव की भैंस भगाकर ले आते। रात में ही उसे काटा जाता, सवेरे सबके चूल्हों पर मांस पकता। किसी को पता भी नहीं चलता कि जानवर कहाँ गायब हो गया। पड़ मृत जानवर दिखते ही हम बच्चों की बेहद खुशी होती। उसे काटते या साफ करते समय हम नजदीक ही रहते। छोटे बच्चों को यह सब नहीं देखना चाहिए, यह कहकर बड़े बूढ़े हमें वहां से भगा देते। ताकतवर लड़के की वे सहायता लेते। मैं मृत जानवर के पैर कसकर पकड़ता, पुरुष छुरे से चमड़ा निकालते। रक्त तथा मांस के कारण हाथ गीले हो जाते, इस कारण बार बार पैर हाथ से फिसलता। क्षमा कीजिएगा, इस कारण पैर बार बार हाथ से फिसलता। और ऐसा हुआ कि गालियां सुननी पड़ती, फिर से पैर कस के पकड़कर खड़ा होना पड़ता। स्कूल में पढ़ाई गई कई बातें याद आती, मतलब यकृत, फेफड़ा, हृदय, स्वादुपिंड, छोटी अंतड़ी, बड़ी अंतड़ी, सभी हिस्सों को मैं बारीकी से देखता। आसपास कुत्ते इकट्ठे होते, एक लड़के की ड्यूटी ही होती कि वह कुत्तों को भगाए। कंकड़ लेकर वह वहां बैठा रहता। इस बीच अछूतों की बस्ती थालियां बर्तन लेकर वहां इकट्ठी होती, सभी मांस पर टूट पड़ते। वे चार घर वाले जिन्हें यह काम सौंपा जाता था और जिन्हें यहाँ पाड़ेवार कहा जाता था, सबसे अच्छा मांस ले जाते। कलेजा, भेजा, जिभ, अतड़िया, नरम मांस आदि वे ले जाते। बचे हुए पर कुत्ते तथा अन्य लोग झपटते। मैं डफली के लिए पतली झिल्ली उठाता, उसे नदी पर ले जाकर साफ करता, छलनी के ऊपर उसे कस कर बांधता और सुखाने बैठता। कुत्ते बिल्लियों के डर से उसकी रखवाली करता। अलबत्ता खाना खाते समय हाथों से दुर्गंध का एहसास होता। जानवर के मरते ही सफेद गिद्ध आ जाते। स्वर्ग से जिसकी डोर टूट जाती वह जानवर मर जाता। इस टूटी डोर का पता इन काफी बड़े सफेद काले भयंकर विद्रूप गिद्धों को हो जाता। बड़े बूढ़े बताते कि ये गिद्ध नाक पर झपट्टा मारेंगे, नाक कट खाए काट खाएंगे। बचपन में हम खेल भी इसी प्रकार का खेलते, मतलब कोई साथी मृत जानवर के रूप में गिर जाता, हम 10-12 लड़के उसके आसपास गिद्ध बनकर इकट्ठा हो जाते थे। इस खेल में मातंग के बच्चे भी आते, परंतु वे हमसे काफी दूर दूर ही रहकर खेलते। मृत जानवर की भूमिका निभाने वाले को हम काफी छेड़ते, हम गिद्धों की तरह आवाज करते। मृत जानवर के हड्डियों का ढांचा कई दिनों तक वहां पड़ा रहता। छाती की हड्डियां, जबड़ा, सींग, दांत, पैर सब कुछ भयावह दिखते। स्कूल में एक बार मनुष्य की हड्डियों का ढांचा बतलाया गया था। सभी प्राणियों की तुलना में आदमी का ढांचा सबसे भयावह लगता है। जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मीलू जमादार का बछड़ा मर गया था, एकदम ताजा गोरा था। अछूतों ने बहुत तेजी से उसे साफ किया। कई दिनों तक प्रत्येक घर पर चानियां सुखाने को रखे गए थे। चानी मृत जानवर का मांस अधिक हो तो उसकी छोटी छोटी बोटियां बनाकर उन्हें साफ करके सुखा देते हैं,
तथा अभावग्रस्त दिनों में उसे खाते हैं। मैं जब स्कूल गया तब गांव के बच्चे ऊंब या मारुति को परेशान कर रहे थे, धेड़ धेड़ कहकर चिल्ला रहे थे। मेरे अंदर जाने के बाद कहने लगे, लो एक और धेड़ आ गया, इसने हमारा बछड़ा खाया है। लड़कियां गौर से सुन रही थी और देख रही थी। मैं भाग निकला, पेट में स्थित बछड़ा सता रहा था। सवेरे सवेरे की नींद में अचानक यह महसूस हुआ कि चंदा माँ जोर से चिल्ला रही हैं, बहुत आर्त आवाज में। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। संता माँ और दादा सोए हुए थे। चंदा माँ बहुत तड़के ही उठकर गुड़ की काली चाय बनाती और मुझे बुलाती। मुंह न धोकर मैं एक कप चाय पी लेता। उम्र के 10-12 वर्ष तक मैं न कभी शौच के लिए पानी ले गया और न कभी सवेरे मुंह धोया। स्नान नदी पर जाकर करता, उसी समय अन्य काम हो जाते। बदन पर काफ़ी गंदगी जमी रहती, साफ करने के लिए साबुन ही कहा था। पत्थर से शरीर को रगड़ता, कपड़े मिट्टी से साफ करता। चंदा माँ तड़के ही एक कप चाय देती। चाय पीने के बाद दादा और संता माँ के बीच घुसकर मैं फिर से सो जाता। मेरे जागने के पूर्व ही दादा संता माँ काम पर निकल जाते। जागने के बाद मैं, नागी, निर्मी, मसा माँ के यहाँ चाय पीते। बाद में दूध की चाय बनाकर चंदा माँ फिर से बुलाती। संता माँ गांव की सड़कों पर झाड़ू लगाकर आने के बाद फिर से चाय बनाती, थाली भरकर चाय देती। मैं स्कूल गया होता तो मेरी चाय सुरक्षित रहती। खाने की छुट्टी में मैं घर आकर उस चाय में रोटी का चूरमा बनाकर खा लेता। कभी कभी संता माँ लोटे में चाय लेकर स्कूल आती, मुझे कक्षा से बाहर बुलवाकर चाय पिलाती। स्कूल से आने के बाद चंदा माँ मुझे चानी भून कर देती। चंदा माँ के घर पर हमेशा सूखने के लिए चानी रखे मिलते। मधुमक्खी के कोश पर जिस तरह मधुमक्खियाँ निरंतर भिनभिनाती रहती हैं, ठीक उसी तरह इन मांस खंडों पर लगातार मक्खियाँ भिनभिनाती थी। चंदा माँ की बिल्ली सतत मेरे आसपास घूमती रहती। मैं भी बिल्ली से छेड़खानी करता, उसे भगाने की कोशिश करता, पर वह जाती नहीं। चंदा माँ बिल्ली को मारती, बिल्ली झोपड़ी में गंदा करती, उसकी दुर्गंध आती। उस दुर्गंध से मुझे कह का एहसास होता। चंदा माँ 2 बार चानियाँ लेती, उनके और छोटे टुकड़े करती तथा गर्म तवे पर उन्हें भूनती, तब उनमें से तेल निकलता। पूरे घर में चानी की गंध फैलती। बासी रोटियों के टुकड़े करती, गरम तवे पर उन्हें रखती, उन्हें नीचे ऊपर करती, चूल्हे से उतार कर उन पर नमक मिर्च छिड़कती और वहाँ तवे मेरे सम्मुख रख देती। मांस के तेल में भुनने से रोटी बहुत जायकेदार लगती, मैं मजे से खाता। चानी ना हो तो चंदा माँ रोटी तलकर देती। चूल्हे के ऊपर मिट्टी के एक बर्तन में जानवर की चर्बी रखी जाती। उस मिट्टी के बर्तन के मुंह को कपड़े से बांधकर करीने से उसे रस्सियों से लटकाया जाता। चंदा माँ को मूंगफलियाँ भूनकर खाने की बहुत आदत थी। पता नहीं किस किस से मूंगफली मांग लाते, उन्हें भूनती, गुड़ के साथ उन्हें खाती। मांग कर लाई हुई मूंगफलियां बड़ी हिफाजत से मिट्टी के घड़े में रखकर उसका मुंह बंद कर देती थी। बारिश के दिनों में उसे खोलती। ये सब चीज़ें, चानी, मूंगफलियां, मिर्च आदि दत्तू मामा ला कर देता। चंदा माँ और संता माँ सगी बहनें थीं। ये कुल 6 बहनें थीं, 4 बहनें और थीं, घोंडा, गंगा, रेवबाय तथा आइला। चंदा माँ को बुहरानपुर में, संता माँ को तीर्थ में, घोंडा को चुंगी में, गंगा को वलसंगी में, रेवबाय को बागदरी में तथा आइला को शिरवल में दिया गया था। इन 6 बहनों में लक्ष्मण नामक एक ही भाई था।
छह विवाहों के बावजूद लक्ष्मण अपने वंश को बढ़ा न सका। चंदा माँ तथा संता माँ को उनके पतियों ने छोड़ दिया। चंदा माँ बांझ थी इसलिए, संता माँ को एक ही संतान हुई इसलिए, बाद में कुछ हुआ ही नहीं। संता माँ अपनी इकलौती लड़की के लिए पूरी हिम्मत से हन्नूर में जी रही थी। हन्नूर में उनका मायका था।
दत्तू मामा चंदा माँ की बहन घोंडा का बड़ा लड़का था। दत्तू मामा चंदा माँ के पास अक्सर आया करता, चोरी करता, अंधेरी रात में किसी के खेत में घुसकर मिर्च प्याज मूंगफली चुराता। सवेरे सवेरे भरा थैला लेकर चंदा माँ के घर आता। चंदा माँ दत्तू को बहुत प्यार करती। दोनों थैला खोलते, कभी कभी थैले में मांस की बोटियाँ होती। चंदा माँ को मटन खाने की इच्छा हुई कि वह थैला भर मटन ले आता। दत्तू मामा का एक और भाई था रोहिदास। वह बहुत हमारे गांव, माफ़ कीजिए, वह हमारे गांव कभी नहीं आता। कारण, हमारे गांव की किसी जवान औरत को उसने कभी भगाया था। अछूतों की पूरी बस्ती उसकी टोह में थी। एक दिन सवेरे सवेरे खबर आई कि घोंडा दत्तू की माँ मर गई है। चंदा माँ संता माँ बहन की क्रिया कर्म में हो आई। चंदा माँ काफ़ी रो रही थी। रोते हुए कहती, दत्तू ने ही मेरी बहन का गला दबाया है। मैं सोचता, क्या सचमुच दत्तू मामा ने अपनी माँ की जान ली होगी। मैं आज तक घोंडा माँ की मौत का असली कारण तथा चंदा माँ के उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया हूँ। छह बहनों में संता माँ तथा चंदा माँ ही शेष रह गई हैं, बकरी के दो स्तनों की तरह। चंदा माँ व संता माँ जब सामान्य मनः स्थिति में होती तो काफ़ी आत्मीयता से बातचीत करती। जब झगड़ती तब लगता कि ये दोनों एक दूसरे की जान ही लेकर रहेंगी। चंदा माँ संता माँ को नीचे गिराकर ऊपर बैठती। वह बहुत झगड़ालू औरत थी। झोपड़ी के आसपास पड़ा हुआ पत्थर या मिट्टी तक वह किसी को उठाने नहीं देती। उनकी झोपड़ी के सामने के गिरे हुए गोबर तक को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। किसी पर भी झपटती। कभी वह मसा माँ से भी झगड़ती, एक दूसरे को गालियाँ देती। नागी मेरी बहन और मसा माँ चंदा माँ के शरीर पर टूट पड़ती। ऐसे समय चंदा माँ चिल्ला चिल्ला कर सारी बस्ती को इकट्ठा करती। मस्सा माँ की मुर्गियाँ थीं, चंदा माँ की बिल्ली। बिल्ली मुर्गियों की टाह में रहती, परिणामतः नागी बिल्ली को मारती, चंदा माँ नागी को गालियाँ देती। तब मस्सा माँ बीच बचाव करती, कहती, तू अपनी बिल्ली को बांध कर रख, हमारी मुर्गियों को वह खाती है। बस झगड़ा शुरू हो जाता। मसा माँ और चंदा माँ में झगड़ा शुरू हुआ कि दोनों में कुछ दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती। चंदा माँ अपना गुस्सा बिल्ली पर निकालती, उसे बांध कर रखती। वह पुरानी खाट पर सोती थी। उस खाट की पैर से बिल्ली बंधी रहती। बिल्ली को वह बहुत चाहती। जब वे दोनों चंदा माँ व मसा माँ एक हो जाती, झगड़े बंद तथा बातें शुरू हो जाती, तो हम बच्चे बिल्ली को नदी के दूसरे किनारे पर ले जाकर छोड़ते। चंदा माँ मुझे 10 पैसे देती और कहती, बिल्ली की जान मत ले, पाप हो जाता है, काशी जाना पड़ेगा। वह डराती। मैं और नागी बिल्ली को छोड़कर आते कि वह हमें झोपड़ी में बुलाती, पूछती, बिल्ली का क्या हुआ, उसकी जान ली नहीं ना, कहाँ छोड़ा है, क्या वह चिल्ला रही थी। मैं खामोश रहता। बिल्ली के अभाव में उनका घर सूना सूना लगता। 4-6 दिन बाद वह किसी से बिलौटा मांग लाती, घर में बांध कर रखती, उसकी देखभाल करती। बिलौटा बड़ा होता कि हम उसे फिर नदी के उस किनारे पहुंचाते। गांव में बिल्ली पकड़ने वाले आए कि चंदा माँ बिल्ली को घर में बांध कर रखती। धीरे धीरे मुझे मृत जानवर से घृणा होने लगी। मृत जानवर का मांस खाने वालों पर भी गुस्सा आने लगा। मेरी आयु के सभी सहयोगियों में यह गुस्सा छूत के रोग की तरह फैलने लगा। चमड़ा उतारे हुए जानवर के मांस पर हम पेशाब करते, गोबर या मिट्टी फेंकते, पर गंगा माँ ऐसे मांस को भी ले जाती, धोती, पकाती। हम साथियों को उन पर गुस्सा भी आता और बुरा भी लगता। मृत जानवर का मांस कोई खाए ही नहीं ऐसा लगता। संता माँ बहुत गुस्सैल थी। घर पर माँ की जच्चगी हो चुकी थी। हम बाहर खेल रहे थे। इन दिनों संता माँ हम पर बहुत गुस्सा करती। कहती, शिशु को किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। माफ कीजिएगा, इसे फिर से सुन लेंगे। इन दिनों संता माँ हम पर बहुत गुस्सा करती। कहती, शिशु को किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। किसी के भी स्पर्श से उसे भूत बाधा हो सकती है। वह हमें बहुत गालियां देती। इन दिनों वह किसी को छूती नहीं। बाहर से आने के बाद झोपड़ी में प्रवेश करने के पूर्व कहती, पीछे मुड़कर थुको और फिर भीतर आओ। पैरों पर पानी डाले बगैर वह भीतर आने ही नहीं देती। भीतर जाने के बाद शरीर पर गोमूत्र छिड़कती। गोमूत्र लाने का काम मेरा या नागी का होता। हम लोग लोटा लेकर गायों के पीछे दौड़ते। गाय मुतती है ही नहीं, लोटा भरता नहीं, परेशान हो जाता। इच्छा होती लोटे में खुद ही मूत कर ले आऊं, पर साथ में बहन होती थी। बैल का मूत चलता नहीं था। गोमूत्र इतना पवित्र कि सारी अपवित्रता पवित्रता में बदल जाती। गाय की योनि को स्पर्श करके हम उसे सहलाते और कहते, मूत मूत। तब गाय थोड़ा सा पेशाब करती। काफी कोशिश के बाद हमें गोमूत्र मिलता। मुझे याद है कि एक बार संता माय ने मेरा चेहरा गोमूत्र से धोया था। अच्छा नहीं लगा था, पर करता क्या। उन्होंने जबरदस्ती ही मेरा चेहरा धोया था। लगा कि मुंह में दरारें पड़ रही हैं। वह कहती, गोमूत्र पी बीमारियां भाग जाती हैं। यह सुनने के बाद मैं खूब चिढ़ता। नागी को वह गोमूत्र पिलाती। गर्मी के दिन थे। मैं तथा मातंग समाज का भीमू हम दोनों इन दिनों रोज खेलते। उसकी माँ हम दोनों पर स्नेह जतलाती। खेलते हुए एक बार प्यास लगी, इस कारण हम दोनों घर आए। मैं पहले पानी पी गया। भीमू को पानी दे रहा था कि संता माँ चिल्ला उठी, अरे मातंग को साथ लिए क्यों घूम रहा है, उसके साथ क्यों खेल रहा है। गांव जल गया क्या कि इसके साथ खेलने लगा। उसे लोटा मत दे, अपवित्र हो जाएगा। और वह भीमू को डांटते हुए कहने लगी, चल यहां से निकल। भीमू को पानी पीने से मना करने के कारण मुझे काफी बुरा लगा। बिरादरी दोस्ती से भी बड़ी होती है क्या? प्यास से भी बिरादरी बड़ी होती है क्या? भीमू वो आदमी नहीं है क्या? फिर उसके स्पर्श से पानी अपवित्र कैसे हो जाएगा। भीमू और मैं नदी पर चले गए। पैर जल रहे थे। नदी पर भी महारों का अलग घाट था और मातंगों का अलग। अब हम किस घाट का पानी पिए। यहाँ पानी ही पानी का बैरी बन चुका है। हमारा मन अब दो घाटों में बढ़ चुका था। मैं और भीमू मातंगों के घाट पर जाकर पानी पीने लगे। घर जाने के बाद संता माँ ने मुझे इसलिए पीटा कि मैंने मातंगों के घाट का पानी पिया था। उन्होंने मुझसे कहा, आगे कभी मातंग लड़के के साथ खेलेगा तो याद रख, रोटी बंद कर दूंगी। फिर जा मातंगों की बस्ती में। मातंगों की संगत क्यों पकड़ रहे हो? आजकल ऐसे क्या बुरे दिन आए हैं तुझे? राजा का बेटा है तू, राजा की शान से जी, पटेल का है रे तू। संता माय अनाप शनाप बक रही थी और उधर अंसा माँ ने भी भीमू को पीटा था। मुझे साथ में लेकर उसने मातंगों का घाट अपवित्र किया था इसलिए।